प्रकार की बताएंगे, ये ज्ञान चेतना और कर्म चेतना, अज्ञान चेतना। अज्ञान चेतना में कर्म चेतना और कर्म फल चेतना, इसका स्वरूप थोड़ा बताइए।
चेतना के कितने भेद हैं?
ज्ञान और अज्ञान ऐसे दो बताए गए, ज्ञान चेतना और अज्ञान चेतना। अज्ञान में कर्म चेतना और कर्म फल चेतना।
कर्म चेतना
और कर्म फल चेतना।
कर्म फल चेतना
ये अज्ञान चेतना हो गई,
और ज्ञान चेतना।
हाँ हाँ बराबर,
तीन है ना।
तीन
कर्मों के फल को भोगना ये कर्म फल चेतना है, और कर्मों के फल को जहाँ भोगना ही नहीं पड़ता और केवल चेतन आत्मा के चेतन स्वभाव की अनुभूति हो, उसको ज्ञान चेतना कहना चाहिए। जहाँ कर्मों का फल तो भोगना न पड़े और ज्ञान स्वभावी आत्मा को ही ज्ञान के रूप में ज्ञान चेतना का अनुभव करे, ऐसी दशा ज्ञान चेतना दशा है। जैसे केवली भगवान सिद्ध भगवान, सिद्ध भगवान ज्ञान चेतना वाले हैं, और संसारी प्राणी कर्म चेतना वाले हैं, और कर्म फल चेतना वाले, कर्म चेतना वाले और कर्म फल चेतना वाले दोनों चेतना वाले संसारी जीव हैं।
अगला प्रश्न है, आतप उनके गुणस्थान, उनके गुणस्थान चाहिए, ज्ञान चेतना
गुणस्थान।
हाँ, और कर्म फल चेतना और कर्म फल चेतना गुणस्थान।
संसारी जीव कर्म चेतना वाले और कर्म फल चेतना वाले हैं, तो संसारी जीव कहाँ तक हैं? अरिहंत परिमिष्टि तक कर्म चेतना वाले तो हैं। कर्म फल का अनुभव अरहंत भगवान क्या नहीं कर रहे? आघाती कर्म की अनुभूति तो है। तो कर्म चेतना का फल अरहंत भगवान को भी मिल रहा है।
वो अज्ञान दशा कैसी महाराज फिर?
हाँ,
वो अज्ञान चेतना बोले,
अज्ञान
अज्ञान दशा बोले ना कर्म फल चेतना को।
नहीं, अज्ञान का उदय तो पहले गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक होता है, तो अज्ञान के साथ में भी कर्म चेतना और कर्म फल चेतना का अनुभव कर सकते हैं।
13वें में अज्ञान कैसे बोलेंगे? 13वें में अज्ञान चेतना कैसे बोलेंगे फिर?
केवल ज्ञान में अज्ञान चेतना?
हाँ?
नहीं, अज्ञान चेतना अलग है, अज्ञान चेतना कोई नाम थोड़ी है। कर्म चेतना, कर्म फल चेतना और ज्ञान चेतना चार हैं क्या?
नहीं, नहीं।
अज्ञान चेतना भी एक है क्या?
अज्ञान में दो बोले कर्म।
हाँ, अज्ञानी जीव भी संसारी हैं और केवल ज्ञानी भी संसारी हैं। संसार का संबंध कितने गुणस्थान तो बनता है? 14वें गुणस्थान तक। तो संसारी जीवों में कर्म चेतना और कर्म फल चेतना दोनों घटित होते हैं, और उसमें केवल ज्ञानी को भी लेना और केवल ज्ञान से रहित छद्मस्थ जीवों को भी लेना, पहले गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक।
अगला प्रश्न है महाराज जी,
उसमें भी देखो भेद करना चाहो तो ऐसा करो, छद्मस्थ अवस्था के दो भेद करो। चारों घाती कर्म के उदय वाले, घाती आघाती आठों आठों कर्मों के उदय वाले छद्मस्थ जीव, और मोहनी कर्म रहित मोहनी कर्म रहित सात कर्मों को भोगने वाले छद्मस्त जीव। गुणस्थान लगाना आप इसमें, पहले गुणस्थान से दसवें गुणस्थान तक आठों कर्मों का फल मिलता है जीव को, और बारहवें गुणस्थान में, ग्यारह बारह में सत्ता तो है, वहाँ उदय नहीं है, इस अपेक्षा से फल नहीं मिलेगा, अंतर्मुहूर्त के बाद फल मिलेगा आठों कर्मों का। पर अंतर्मुहूर्त तक यदि उसका पूरा ही उपशमन है तो उसमें छद्मस्थ जीव केवल सात कर्मों का ही फल भोग रहा है ग्यारहवें बारहवें में, और तेरहवें में चौदहवें में कितने कर्मों का फल भोग रहा है? चार, चार कर्मों का फल तो भोगता है। ज्ञान चेतना वाले तो सिद्ध भगवान ही हैं। हाँ, केवल ज्ञान चेतना को ही अनुभव करते हैं तो सिद्ध भगवान ही करते हैं केवल।
अगला प्रश्न है, आत्म बुद्धि और प्रकृति एकेंद्रीय जीव को रहते हैं तो भी उनको प्रशस्त पुण्य प्रकृति मिली है, वो कैसे?
फिर से।
आत्म और बुद्धि और प्रकृति एकेंद्रीय जीव को रहते हैं तो भी उनको प्रशस्त पुण्य प्रकृति में लिया है, वो कैसे?
आतप को
और उद्योत को,
उद्योत को पुण्य प्रकृति में लिया है। हाँ, तो क्या प्रश्न है?
वो एकेंद्रीय जीव को रहते हैं प्रकृति, आतप और उद्योत।
हाँ, एकेंद्रीय जीव को,
वो भी फिर उनको पुण्य प्रकृति में कैसे?
हाँ, पुण्य प्रकृति कैसे? हाँ, ये
एकेंद्रीय जीव के लिए। हाँ,
आता पुण्य प्रकृति है,
आता पर उद्योग दोनों पुण्य प्रकृति में,
पुण्य प्रकृति दोनों पर। पुण्य प्रकृति क्यों है ये प्रश्न है। पुण्य प्रकृति क्यों है, पाप प्रकृति ये क्यों नहीं, ये प्रश्न है। एकेंद्री जाति नाम कर्म तो पाप प्रकृति, द्विंद्री जाति त्रस पर्याय पुण्य फल है ना, पांचों जाति, चार जाति, हाँ तो कौन कौन सी जाति पाप, चार जाति और पंचेंद्री पुण्य प्रकृति। एकेंद्री को, द्विंद्री को इंद्री की अपेक्षा से देखा जाए, जाति नाम कर्म की अपेक्षा से, तो ये हो गए पाप प्रकृति। तो उद्योत नाम कर्म के उदय से जीव को एकेंद्री अवस्था मिलने के बाद भी जो शरीर मिल रहा है वह प्रकाशमान शरीर मिल रहा है, सूर्य बिंब में उद्योत नाम कर्म के उदय से प्रकाशमान शरीर मिल रहा है, वह सबके लिए हित भी करता है। आकाश में सूर्य विमान न हो तो पानी ही नहीं बरस सकता यहाँ। तो ये उद्योत नाम कर्म का उसको है, इसलिए मूल में वो सूर्य विमान एकेंद्रीय जीव का शरीर मूल में ठंडा है और उसके किरणें गर्म हैं। हाँ, सूर्य को आतप नाम कर्म का, चंद्र का उद्योत, वो मूल भी ठंडा है और किरणें भी ठंडी हैं। सूर्य के लिए मूल ठंडा है, किरणें गर्म हैं। तो ये उद्योत नाम कर्म के उदय के कारण से किरणें गर्म होती हैं, ये किसका फल है? किसका फल है ये? आतप नाम कर्म का फल। इससे पर जीवों को हित हो रहा है कि अहित हो रहा है? पानी न बरसे तो हाय हाय इतराय इतराय होता है यहाँ। कुछ ऐसे हम पॉइंट्स ढूंढ सकते हैं जिस कारण से वह पुण्य प्रकृति घोषित है। उद्योत नाम कर्म यद्यपि जीव के एकेंद्री जीव का वह नाम कर्म है, पर उस नाम कर्म के वजह से किसी दूसरे को हित होता हो तो वह पुण्य के कारण से ही हित हो रहा है। इसी प्रकार चंद्र की किरणें भी हितकारक ही हैं। ये पॉइंट चिंतन से निकाल सकते हैं कि जिस नाम कर्म के उदय से उदय के फल स्वरूप पर जीवों के लिए हित हो और स्वयं का शरीर प्रकाशमान हो, शरीर सुंदर लगता हो, मनुष्य की सुंदरता को वर्णन करने के लिए जो मनुष्य का शरीर पुण्य के उदय से सुंदर मिलता है उसको चंद्रमुखी कह करके सूर्य बिंब का ही उदाहरण देते हैं। चंद्रमुखी, पाषाणमुखी क्यों नहीं कहा? ये पाषाण ऐसे पाषाण ये उदाहरण देने लायक नहीं है, क्योंकि इसमें उद्योत नाम कर्म भी नहीं और आताप नाम कर्म भी नहीं। किसी के पुण्य के फल का वर्णन करने के लिए, शरीर को सुंदर बताने के लिए भी उसका उदाहरण लिया जा रहा है, तो वो सुंदर तो है, चंद्र भी सुंदर है और सूर्य भी सुंदर है। भगवान के परम औदारिक शरीर को वर्णन करने के लिए करोड़ों सूर्य और चंद्र से भी प्रकाशित आपका औदारिक परम औदारिक देह है। इस प्रकार हम उदाहरण बना लेते हैं, बनाते हैं ना। तो भगवान का परम औदारिक शरीर पुण्य का फल है, तो फिर सूर्य का उद्योत नाम कर्म पुण्य प्रकृति क्यों नहीं है? पाप प्रकृति होता ना वो, तो जिनेंद्र भगवान के परम औदारिक शरीर के लिए उदाहरण देना संभव नहीं था। चिंतन करें तो ये पॉइंट्स निकल सकते हैं। अभी तक किसी ने नहीं पूछा था, पहली बार ही पूछा है कि ऐसा क्यों है वो।
अगला प्रश्न है महाराज जी।
अच्छा, आज लाइट नहीं है क्या?
हाँ, नहीं। हाँ, मन और आत्मा में फर्क
है?
अगला प्रश्न है महाराज जी, मन और आत्मा में फर्क।
मन और
आत्मा में फर्क।
आत्मा में
फर्क।
फर्क? मन तो देखो, मन तो मिलने वाली चीज है, आत्मा कोई मिलने वाली चीज नहीं है। मन प्राप्त होता है, अनिंद्रियावर्णी नाम कर्म का फल है वो। इंद्रियावर्णी कर्म के क्षोभ शमसी इंद्रियां और अनिंद्रियावर्णी कर्म के उदय से मन की उपलब्धि होती है। मन आत्मा को मिलता भी है और छूटता भी है। आत्मा आत्मा को मिलता है क्या? आत्मा स्वयं है, आत्मा अनादि, आत्मा द्रव्य है, आत्मा जीव है, लेकिन मन जीव नहीं है। मन आत्मा के लिए मिलने वाला गिफ्ट है, गिफ्ट भेंट है वो। यदि पंचेंद्री जीव बना तो ही मिलेगा, दो इंद्री तीन इंद्री आदि पर्यायों में जन्म ले रहा है तो मन मिलता नहीं, मन नहीं मिलेगा। आत्मा तो रहता है, आत्मा तो सदा है। मन रहित जीव कौन है? है? मन रहित जीव एकेंद्री से लेकर असंगी पंचेंद्री और सिद्ध भगवान। असंगी पंचेंद्री नहीं कहना उनको। मन रहित हैं, सिद्ध भगवंतों के पास मन होता ही नहीं, अरहंत भगवंतों के पास भी मन होता नहीं, जिसको भाव मन कहा है। द्रव्य मन तो है, भाव मन नहीं है। तो भाव मन वाला जीव संगी पंचेंद्री जीव कहलाता है। भाव मन का संबंध श्रुतक ज्ञान के साथ है, जो हमारे चिंतन करने के लिए कोई भी विषय चिंतन करना, सोचना, हेयो पादे की ओर बढ़ना और हेयो हे को हे समझ कर छोड़ना और उपादे को उपादे समझ करके ग्रहण करना, ये चिंतन के बिना नहीं होता। ऐसा चिंतन करने के लिए मन की जरूरत होती है। कौन सा मन? भाव मन। तो भाव मन द्रव्य श्रुत ज्ञान के आश्रय से रहता है और द्रव्य मन मनोवर्गणाओं से रचित अष्ट कमल पंखुरी के आकार से देहगत एक पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। ये पिंड अरहंत भगवान के पास भी होता है, हम लोगों के पास भी होता है, परंतु अंतर इतना है, अरहंत भगवान के पास इस प्रकार का पौद्गलिक द्रव्य मन तो होता है परंतु भाव मन नहीं होता, क्योंकि उनके पास श्रुतक ज्ञान नहीं है। और श्रुतक ज्ञान का अस्तित्व पहले गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक होता है, श्रुतक ज्ञान। और जहाँ तक श्रुतक ज्ञान रहेगा, नियम से संगी पंचेंद्रिय जीव को भाव मन भी रहेगा और द्रव्य मन भी रहेगा। यानी 12वें गुणस्थान तक द्रव्य मन भी है और भाव मन भी है। 13वें गुणस्थान में और 14वें गुणस्थान में सिर्फ द्रव्य मन होता है और सिद्धों में न द्रव्य मन होता है न भाव मन होता है। ये
अगला प्रश्न है महाराज जी। हाँ, ध्रुवबंध और अध्रुवबंध स्पष्टीकरण।
ध्रुवबंध
और अध्रुवबंध, इसका स्पष्टीकरण चाहिए।
ध्रुवबंधी कर्म और अध्रुवबंधी कर्म का प्रश्न है। कौन कौन सी प्रकृति आती है ध्रुवबंधी में, नाम बताओ। प्रश्नकर्ता को नाम मालूम हो? नहीं, आपने ही किया है। दो ध्रुवबंधी के नाम गिनो, एक दो। हाँ, ज्ञानावरणी के 5, दर्शनावरणी के 5। हाँ, दर्शनावरणी में से 9 पूरे। हाँ, अंतराय के 5। देखो, इनको ध्रुवबंधी संज्ञा है। क्यों नामकरण हुआ ध्रुवबंधी? निरंतर बंधते हैं। किस गुणस्थान तक? 12वें गुणस्थान तक। मोहनी कर्म का अभाव होने पर भी इनका बंध जारी रहता है। मोहनी कर्म के उदय में तो इनका बंध है ही, परंतु मोहनी कर्म का न होने पर भी इनका बंध है। 11वें गुणस्थान में रागादि भावों का अभाव होने पर कर्मों का बंध तो होना नहीं चाहिए, लेकिन होता है। कर्म बंध के लिए निमित्त दो होते हैं, कषाय और योग। कषाय और योग से ही गुणस्थान बनते हैं। योग की प्रवृत्ति और कषाय की प्रवृत्ति से उत्पन्न जो आत्मा के परिणाम हैं उनका नाम गुणस्थान। तो पहले गुणस्थान से 10वें गुणस्थान तक मोहनी कर्म के उदय के साथ ज्ञानावरणी आदि कर्मों का भी बंद होता है। जहाँ मोहनी कर्म भी हो, योग भी हो, दोनों हो, वहाँ पर अंतर्मुहूर्त या अंतर्मुहूर्त से ज़्यादा भी बंद होता है। जगण्य अंतर कितना है ज्ञानावरणी कर्म का? जगण्य बंध है अंतर्मुहूर्त, और उत्कृष्ट बंध 30 कोड़ा कोड़ी। तो कषाय और योग दोनों जहाँ होती हैं वहाँ पर 30 कोड़ा कोड़ी का भी बंध होता है। और कषाय मंद हो जाए तो या कषाय का अभाव हो जाए तो अंतर मुहूर्त के लिए भी बंद होता है, और कषाय का बिल्कुल ही अभाव हो जाए, क्षय हो जाए या उपशमन हो जाए, ऐसे 11वें और 12वें गुणस्थान में अंतर मुहूर्त का है ना, नहीं सातावेदनी का एक समय के लिए बंद है, हाँ साता का एक की है, ठीक है साता एक का ही बंद है, बाकी प्रकृतियों का बंद नहीं, उदय है, उदय उदय है, ठीक है। 11वें गुणस्थान में और 12वें गुणस्थान में उदय मात्र होता है। क्या ध्रुवबंदी का प्रश्न था, तो ध्रुवबंदी ये जो ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी कर्म है, निरंतर बंद होने से इनका बंद बिल्कुल एक सेकंड के लिए भी रुकता नहीं जब तक जीव 10वें गुणस्थान को पार नहीं करता, इसलिए इनकी संज्ञा ध्रुवबंदी संज्ञा है। अध्रुवबंद अध्रुवबंद में कौन कौन से प्रकृतियों का नाम आता है बताओ, हाँ अध्रुवबंदी है तो देखो अध्रुवबंदी में अपन किस किस को ले, आयु, नाम कर्म, गोत्र कर्म, वेदनी कर्म, हाँ जब साता का बंद होता है तो असाता का बंद नहीं होता, असाता का बंद होता है तो साता का बंद नहीं होता, उच्च गोत्र का बंद होता है तो नीच गोत्र का बंद नहीं होता, जिस समय नीच गोत्र का बंद होता है उच्च गोत्र का बंद नहीं होता, इस प्रकार एक का बंद होने पर एक का न हो, ऐसे प्रकृतियों को अध्रुवबंदी प्रकृति कहना चाहिए।
अगला प्रश्न है महाराज जी, द्रव्य शुद्ध है तो पर्याय भी शुद्ध है या अशुद्ध?
द्रव्य शुद्ध है तो पर्याय भी शुद्ध होना ही चाहिए। हाँ शुद्ध निश्चय नय के दृष्टिकोण से है, वो दृष्टिकोण यदि शुद्ध दृष्टिकोण से देख रहे हैं तो द्रव्य को हम शुद्ध ही देखेंगे, निश्चय नहीं, वस्तु स्वरूप को विचार करने के लिए माध्यम है, नहीं एक माध्यम है, द्रव्य को अशुद्धता का गौण करके, द्रव्य में से अशुद्धता को गौण करके शुद्धता को दृष्टि में रख करके यदि विचार करेंगे तो द्रव्य शुद्ध दिखेगा, गौण करके, ऐसा नहीं समझना है कि अशुद्ध द्रव्य यदि निश्चय नय से उसको विचार किया जाए तो वो शुद्ध हो जाता है, शुद्ध होता नहीं है अशुद्ध ही रहता है, उसकी अवस्थाएं दो प्रकार की अवस्थाएं, द्रव्य शुद्ध भी है और अशुद्ध भी है, पर एक समय में दोनों हो ये संभव नहीं है, फिर ये दोनों प्रकार के जो नए हैं, शुद्ध नए और अशुद्ध नए, अशुद्ध नए की दृष्टि से विचार करेंगे तो द्रव्य में अशुद्धता प्रधान रहेगी और शुद्धता गौण रहेगी, और शुद्ध नए की दृष्टिकोण से उस द्रव्य के संबंध में विचार करेंगे तो उसकी शुद्धता प्रधान रहेगी, अशुद्धता गौण रहेगी, लेकिन द्रव्य जो है वो है ही, वर्तमान में अशुद्ध है तो अशुद्ध ही है, पर हमारी दृष्टि से उसकी शुद्धता है या नहीं, किस प्रकार से है, इस बात को विचार करने के लिए नए प्रकरण प्रवृत्त होता है, नए का अवलंबन लिए बिना वस्तु का सर्वांगीण ज्ञान नहीं होता, इसलिए नए प्रकरण को भी सामने रख करके वस्तु स्वरूप को विचार करने के लिए भगवान ने उपदेश दिया है, दोनों प्रकार से विचार करना चाहिए। संसारी जीव को सर्वथा नए प्रकरण अगर नहीं होता तो जीव को सर्वथा अशुद्ध ही कहना पड़ता, क्योंकि अशुद्ध दिख रहा है इसलिए अशुद्ध ही है ये कहना पड़ता, हाँ एकांत होता, तो ये नए प्रकरण जो है अपनी विचारधारा को अनेकांत का रूप देने के लिए प्रवृत्त होता है। नयिका ज्ञान होने से व्यक्ति के पास अनेकांतात्मक विचार आते हैं। अगर नयिका ज्ञान रहेगा, ज्ञान नहीं रहेगा, तो एकांत विचार ही आएंगे, जैसा दिखता है वैसा ही कहेगा। जैसे हाथी का उदाहरण दिया जाता है, हाथी के पैर को एक व्यक्ति ने पकड़ा, छह लोग अंधे थे और हाथी को देखने के लिए गए और सबको अलग अलग रूप से हाथी दिखाई दिया, अंधे थे ना, अलग अलग रूप से हाथी का आकार उन्होंने देखा। कैसे देखा? हाथ से छूकर उसका आकार प्रकार पता लगाया। तो जिसने पैर छुआ उसने कहा कि हाथी तो खंभे की तरह होता है, ऐसा कहा। और हाथी के कान को जिसने पकड़ा उसने क्या कहा? सूप बोलते हैं, हाथी सूप के समान होता है। और जिसने पूंछ पकड़ा, हाथी तो झाड़ू के समान होता है, ये कहा। और जिसने पेट पर हाथ फेरा उसने कहा कि हाथी तो दीवार के समान है। और जिसने सूंड पकड़ा उसने कहा कि हाथी तो केले के पेड़ के समान है। ऐसे अलग अलग निर्णय आया और इन सारे निर्णयों को एक बनाएंगे, एक जगह लाएंगे, तो उन अंधों को हाथी का स्वरूप समझाने वाला कौन आवश्यक है? जिसको आंखें हैं वो व्यक्ति आवश्यक है। तो वो व्यक्ति आकर के खड़ा हो जाता है और सबका विचार सुन लेता है। तो हाथी एकांत से ही चल रहे थे, वो हाथी दीवार के समान ही है, हमने छुआ है, विश्वास करो मेरी बात पर, इससे हाथी अन्य हो ही नहीं सकता। तो ये विचार भी नय को स्पर्श कर रहा है, लेकिन एकांत नय को स्पर्श कर रहा है। अगर अनेकांत की ये चक्षु मिल जाए तो ये व्यवहार नहीं और ये निश्चय नहीं, इन दोनों दो आंखों से, नए की दो आंखों से, व्यवहार से और निश्चय से वस्तु स्वरूप का यदि विचार करते हैं तो केवली भगवान से प्रतिपादित तो जो ज्ञान है क्या
के
नहीं 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 सर्वे शुद्धा हो शुद्ध नया, ये कहा है ना, शुद्ध नय के दृष्टिकोण से संसार में एक इंद्रिय से लेकर निगोध से लेकर जितने भी संसारी प्राणी संसार अवस्था में हैं वो सारे के सारे शुद्ध हैं। तो अभवि जीव भी शुद्ध है ना, क्या नहीं है? अभवि जीव को भी केवल ज्ञानावरणी, मति ज्ञानावरणी सारे कर्म बंद हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? तो इस बंद अवस्था को गौण करो और आत्मा को प्रधान बनाओ। तो कर्म निरपेक्ष आत्मा शुद्ध ही है, चाहे वो भव्य हो चाहे अभव्य हो। सर्वे शुद्धा हो शुद्ध नया, शुद्ध नय के दृष्टिकोण से यदि हम विचार करते हैं सारे संसारी प्राणी शुद्ध हैं। और अशुद्ध नय को प्रधान करके, दृष्टि में रख करके यदि विचार करते हैं तो सारे संसारी प्राणी अशुद्ध ही हैं। परंतु व्यक्त रूप से हम देखना चाहते हैं शुद्ध नय को, तो शुद्धों सिद्ध परमेष्टियों को देखना चाहिए। सिद्ध परमेष्टि शुद्ध नय की दृष्टिकोण से शुद्ध हैं। ये दृष्टिकोण वहाँ पर साकार होता है और संसार के काल में प्रधान और गौण, गौणता की अपेक्षा से और प्रधानता की अपेक्षा से सापेक्ष कथन करने पर अनेकांत रूप में ये व्यवहार ने शुद्ध नय और अशुद्ध नय ये दोनों प्रवृत्त होते हैं।
अगला प्रश्न है महाराज जी, विवाह योग नाम कर्म एक आयु में वही रहता है क्या बदलता है?
विहायो गति नाम कर्म, प्रशस्त विहायो गति नाम कर्म
और
अप्रशस्त विहायो गति नाम कर्म। बदलता भी है
क्या? एक कवि में वही रहते हैं क्या, बदलते रहते हैं?
अब इसका कथन तो कहीं पड़ा नहीं है, बदल सकेगा क्या, विचार करना पड़ेगा। हाँ, बदल सकेगा? ठीक ढंग से चलना शुरू कर देंगे तो बदल जाएगा। टेढ़े मेढ़े नहीं चलना। अप्रशस्त विहायो गति नाम कर्म के उदय से हम
प्रशस्त में आ गए।
टेढ़े चलते हैं तो टेढ़ा चलना छोड़ दो,
प्रशस्त
सरलता से चलो, प्रशस्त चलो।
अगला प्रश्न है महाराज जी,
अपन सभी को अप्रशस्त नाम कर्म का उदय होगा, हम नहीं चल पाते ऐसे जैसे आचार्य श्री चलते हैं। प्रशस्त विहायवती नाम कर्म। हाँ चलो,
अगला प्रश्न है,
उसका विचार करेंगे।
परघात के लिए जो अंग अवयव होता है,
हाँ,
उससे उपघात होता है क्या?
परघात,
हाँ, परघात के लिए जो अंग अवयव होते हैं,
हाँ,
उससे उपघात होता है क्या?
परघात नाम कर्म के उदय से जो अंगों का अंग मिलता है, उससे स्व का भी घात होता है क्या? हो सकता है, परंतु वो जो अंग उत्पन्न होता है उसको परघात नाम कर्म इसलिए नाम कर्म है कि उसके माध्यम से ज़्यादा वह पर का ही घात करता है और वह वही उसका शस्त्र है, उसके बिना तो वो शिकार खेल ही नहीं सकता।
अगला प्रश्न है महाराज जी,
जैसे सींग है, सींग है दांत है, दांत दांत नखून है, ये परघात नाम कर्म के उदय से होते हैं। तो ये अपना नखून अपने को भी लग सकता है ना, घात अपना भी हो सकता है।
अगला प्रश्न है महाराज,
अपना ही जीभ कट जाता है,
दांत कारण हो गए,
पाप कर्म के उदय से।
अगला प्रश्न है महाराज जी,
हाँ,
अर्धपुद्गल परावर्तन का वर्णन कीजिए।
अर्धपुद्गल परावर्तन काल, जिस जीव को सम्यक दर्शन उत्पन्न हो जाता है, हो जाने के बाद उसका संसार काल अधिक से अधिक अर्धपुद्गल परावर्तन काल शेष रहता है, ऐसा भगवान कहते हैं। ये अर्धपुद्गल परावर्तन काल, अर्धपुद्गल किसको कहें, क्या है ये? तो ये लगभग उस संख्या की कोटि में आता है, इसको हम असंख्यात काल भी नहीं कह सकते, संख्यात काल भी नहीं कह सकते, असंख्यात भी नहीं कह सकते, असंख्यात भी नहीं, अनंत तो कह सकते हैं लेकिन अक्षय अनंत नहीं कह सकते, सक्षय अनंत कह सकते हैं। सक्षय अनंत काल को अर्धपुद्गल परावर्तन काल कहते हैं। तो इस अर्धपुद्गल परावर्तन काल के बीच में जिस जीव को सम्यक तो होने पर, चाहे वह सम्यक दृष्टि हो या सादी मिथ्या दृष्टि हो, सादी मिथ्या दृष्टि होने के पश्चात भी वह बहुत समय तक मिथ्यात्व के साथ परिभ्रमण कर सकता है। अंतर्मुहूर्त पंच परावर्तन, हाँ, उसी परावर्तन काल के जो दो भेद हैं, पुद्गल परावर्तन काल के, उसका आधा, जैसे उसके दो भेद बताया है, नो कर्म अर्धपुद्गल परावर्तन और कर्म द्रव्य, कर्म द्रव्य परावर्तन के दो भेद हो गए, कर्म द्रव्य पुद्गल परावर्तन और नो कर्म द्रव्य पुद्गल परावर्तन, ऐसे दो भेद हो गए। तो इसका जो प्रमाण है उसको मिला करके उसका हाफ काल को निकालना, दोनों मिला लो और उस काल को अर्धा भाग में 50% कर दो, उसको अर्धपुद्गल परावर्तन काल कहते हैं। ये अनंत के लगभग पहुंच जाता है, असंख्यात सब असंख्यात का उल्लंघन करता है।
अगला प्रश्न है महाराज जी, पुरुषोपवास प्रतिमा का स्वरूप क्या है, उत्तम मध्यम और जदन्य, और कैसे करें?
पुरुषोपवास प्रतिमा चौथी प्रतिमा का नाम है, इसकी साधना चौथी प्रतिमाधारी करता है। पुरुषोपवास एक शिक्षाव्रत भी है, उसमें दूसरी प्रतिमा के साथ करता है। तो यहाँ दूसरी प्रतिमा के संबंध में यदि विचार करते हैं तो प्रोषत यानी एक बार आहार करने को प्रोषद बोलते हैं और उपवास करने को उपवास बोलते हैं। जो चारों प्रकार के आहार को त्याग करना जिसमें हो जाए उस विधि को हम उपवास कहते हैं। प्रोषत उपवास, ईषत आहार ग्रहण करना और एकासन करना, ये भी प्रोषद उपवास है। इसको जगन्य की कोटि में लेना चाहिए। इसको एक बार भोजन करने को भी प्रोषद उपवास कहा तो एक समय का उपवास हुआ। दो बार यदि आहार करते हैं तो एकासन को प्रोषद उपवास ही कहना चाहिए। जगन्य प्रोषद उपवास है ये, एक बार आहार करना, दोबारा आहार नहीं करते।
खाली पर्व के दिन,
हाँ हाँ अष्टमी चतुर्दशी, सिर्फ अष्टमी चतुर्दशी को एक बार भोजन करने को प्रोषद उपवास कहते हैं। और दूसरी प्रतिमा में वह दो बार नहीं खाता, नियम से एक आसन करता है। कम से कम एक बार तो खाने का नियम होना ही चाहिए। इसके माध्यम से उपवास का अभ्यास कराया जा रहा है। जिसको उपवास करने की शक्ति नहीं होती है, एक बार खाने का अभ्यास तो नियम से करना ही पड़ेगा, क्योंकि ग्रह त्यागी होने के बाद एक बार खाना पड़ेगा। ग्रह त्यागी होने के बाद, ग्यारहवीं प्रतिमा लेने के बाद एक ही बार खाएगा। तो एक ही बार क्यों खा रहा है? संयम धारण करने के पश्चात भी महाव्रति मुनि बनने के बाद एक बार ही खाना, ऐसा एक भुक्त मूल गुण होता है, एक भुक्ति। तो उसी मूल गुण का अभ्यास ग्यारहवीं प्रतिमाधारी को करा के उसको महाव्रति मुनि बनाया जाता है। तो मुनि व्रत का अभ्यास पुरुषोपवास के माध्यम से होता है, इसलिए मुनि व्रत धारण करने की शिक्षा मिलने के कारण पुरुषोपवास शिक्षा व्रत इसका नामकरण हुआ है। मुनि बनने का ट्रेनिंग मिलता है एक बार खाने से, ये जगन्य हुआ। तो जगन्य अभ्यास भी होगा, कोई भी परिस्थिति में कैसा भी रोज हम एक बार भी भोजन कर सकते हैं, ऐसी यदि शक्ति है तो मुनि व्रत धारण वह कर सकता है। अब कभी कभी उपवास करना पड़े तो उपवास भी कर लेगा। ज़्यादा उपवास करने वाला ही मुनि बनते हैं ऐसा नहीं है, उपवास न करने वाले भी मुनि बनते हैं, लेकिन एकासन जो नहीं कर सकते वो मुनि ही नहीं बन सकते। आहार लेकर के आए और ध्यान में बैठ गए, केवल ज्ञान हो सकता है कि नहीं? जिस दिन आहार हुआ है हो सकता है, दो बार खा करके आए तो केवल ज्ञान नहीं होता। मतलब आहार पर भी डिपेंड है क्या? एक भुक्ति का क्यों नियम रखा है? इसलिए रखा है, मुनि मूल गुणधारी भी होते हैं और उत्तर गुणधारी भी। यदि एक बार खाएंगे तो दोबारा नहीं खा रहे हैं, वो उपास के कोटि में आया, उत्तर गुण हुआ। दोबारा खाना था लेकिन कभी नहीं खाएंगे, ये उत्तर गुण हुआ। और एक ही बार खाना, ये मूल गुण हुआ। एक भुक्ति मूल गुण में आता है ये। और दोबारा नहीं खाना, ये उत्तर गुण की भी रक्षा हो रही है। मूल गुण के साथ उत्तर गुण की जहाँ रक्षा होती है, वहाँ पर ही मुनि व्रत हो सकता है, ऐसा कहा है। तो उत्तर गुण कर्म निर्जरा का कारण, तपसा निर्जरा च, तप बहिरंग तप और अंतरंग तप एक कर्म निर्जरा के निमित्त हैं, साधन हैं। तो हम दो बार नहीं खाते, इसका मतलब कर्म की निर्जरा करते हैं। एक बार खाते हैं तो कर्म की निर्जरा नहीं करते, मूल गुण का पालन करते हैं। एक बार खाकर मूल गुण का पालन करना है और दो बार न खाते हुए उत्तर गुण का पालन करना है। तो प्रोषदोपवास इस शब्द का जो अर्थ है, ईशत प्र शब्द के सामने ईशत शब्द जुड़ा है। ईशत यानी एक बार, और कम, एक बार खाना और कम खाना, ये दोनों आ गए। एक बार खाना,
कम खाना
और कम खाना, ईशत यानी कम। और प्र उपसर्ग पूर्वक जो प्रोषद शब्द बना, उसका अर्थ होता है एक बार। प्रोषद यानी एक बार, ऐसा अर्थ निकाला है। और ईशत और प्र, ये दोनों अलग अलग करेंगे तो ईशत का अर्थ होता है कम, कम खाना यानी उनोदर करना। मुनि महाराज पेट भर नहीं खाते, एक बार भी खाते हैं तो फुल पेट भर नहीं खा सकते। और एक बार न खा, फुल पेट भर न खा पाए, इसलिए भगवान ने संदेश दिया, तुमको तो उत्तर गुण पालन करना है, खड़े होकर खाना। खड़े होकर के खाएंगे तो पेट भर नहीं खा सकते, रीढ़ की हड्डी जरा अंदर आती है और पेट अंदर चला जाता है, तो ज़्यादा पेट में ले नहीं सकते। और बैठ करके खाएंगे तो आसानी से खा सकते हैं, रीढ़ की हड्डी पीछे होती है और पेट बाहर आता है, तो ज़्यादा ले सकते हैं। तो भगवान ने कहा ये ज़्यादा न खा सके, और इसका उत्तर जो उत्तर गुण उनोदर तप है, उसको भी जगन्य मध्यम उत्कृष्ट रूप से बहुत प्रकार का वर्णन किया। जगन्य उनोदर भी अगर करते हैं तो जगन्य उनोदर तो नियम से हो ही जाता है, यदि खड़े होकर के खाएंगे तो ज़्यादा नहीं खा सकते।
जगन्य उनोदर को एक घास ही बताया है ना?
हाँ,
एक घास के लिए जगन्य उनोदर बताया।
हाँ, जगन्य एक ग्रास, वो तो विशेष तप हुआ, उत्कृष्ट तप हुआ। यदि हम पेट भर भी खा सके तो खा सकते हैं, परंतु खड़े होकर के पेट भर नहीं खा सकते।
उनोदर होता ही है,
जबरदस्ती खाए तो बात अलग है। पेट भर खाना खड़े होकर संभव, इतना संभावना नहीं रहती, इसलिए भगवान ने ये मूल गुण के रूप में रखा है कि खड़े होकर खाना और एक बार खाना। तो इसके माध्यम से उत्तर मूल गुण का पालन करने से उत्तर गुण का पालन ऑटोमेटिक उसके साथ हो रहा है। चौथी प्रतिमा प्रोषदोपवास, थोड़ा सा थोड़ी सी वो साधना बढ़ा लेता है चौथी प्रतिमा में। दूसरी प्रतिमा में स्टार्ट करता है, दूसरी प्रतिमाधारी तो कम से कम एक बार तो एक आसन तो करेगा ही, और चाहे तो वह मध्यम पुरुषोपवास भी कर सकता है।
मध्यम का स्वरूप महाराज
जगन्नी भी
मध्यम का स्वरूप,
मध्यम का स्वरूप तीन बार एक आसन करना, सप्तमी को, अष्टमी को और नवमी को, तीन एक आसन हो गए, मध्यम हो गया। ऐसे ही चतुर्दशी को,
त्रयोदशी, चतुर्दशी और एकादशी,
हाँ हाँ, मतलब चतुर्दशी अष्टमी के आगे पीछे एकासन करता है तो चतुर्दशी को भी करना चाहिए, ऐसा नियम नहीं है। साधना करना चाहिए तो चतुर्दशी को भी कर सकते हैं और अष्टमी को भी कर सकते हैं, नहीं होता है तो अष्टमी को भी कर सकते, केवल अष्टमी को कर सकते हैं या तो चतुर्दशी को कर सकते हैं, जैसी शक्ति है शक्ति को देख करके इसको करना चाहिए। इसके माध्यम से उत्तर गुण का पालन अभ्यास अच्छी तरह से हो जाता है। अब प्रोषदोपवास जो वो प्रतिमा है, चौथी प्रतिमा, उसमें इसी साधना को विशेष रूप से बढ़ाता है। विशेष रूप से यदि जगन्य कर रहा होता है तो मध्यम कर लेगा,
और उत्कृष्ट
मध्यम कर रहा होता है तो उत्कृष्ट कर लेगा।
उत्कृष्ट का स्वरूप,
उत्कृष्ट का स्वरूप दो एक आसन और एक उपवास, बीच में अष्टमी या चतुर्दशी को एक उपवास और उसके आगे पीछे के दिनों में एक आसन, ये उत्कृष्ट हो गया।
अगला प्रश्न है महाराज जी, पहली प्रतिमा दर्शन और दूसरी प्रतिमा व्रत, ये शुद्ध तरह से कैसे किया जाता है?
फिर से,
पहली प्रतिमा दर्शन प्रतिमा,
दर्शन प्रतिमा
और दूसरी व्रत प्रतिमा, ये शुद्ध तरह से कैसे किया जाए, उसका स्वरूप
शुद्ध तरह से कैसे पालन करना? अच्छा, पहली प्रतिमा का पालन, पहली प्रतिमा का नाम है दर्शन प्रतिमा। दर्शन प्रतिमा का अर्थ कई लोग, सामान्य लोग क्या समझते हैं कि रोज दर्शन करना भगवान का, ये दर्शन प्रतिमा है। ये दर्शन प्रतिमा नहीं, देव दर्शन व्रत हुआ। ये देव दर्शन व्रत अलग है और दर्शन प्रतिमा अलग है। देव दर्शन तो सबके लिए है, हर एक के लिए, चाहे सम्यक दृष्टि हो चाहे मिथ्या दृष्टि हो, देव दर्शन तो करना ही चाहिए। कौन से देव का दर्शन? वीतरागी सच्चे देव शास्त्र गुरु का दर्शन तो रोज करना चाहिए। ये देव दर्शन व्रत हुआ। दर्शन प्रतिमा अलग चीज है। दर्शन प्रतिमा में तो साधना है, आप धर्मात्मा बन जाते हैं, आपका गुणस्थान चौथा गुणस्थान हो पंचम गुणस्थान की ओर बढ़ने के सन्मुख अवस्था में रहते हैं। दर्शन प्रतिमा में प्रतिमा सभी पंचम गुणस्थान के होते हैं। थोड़ा सा इसको और खोल दें कि दर्शन सभी प्रतिमाओं में दर्शन प्रतिमा को पहले क्यों रखा? चौथे गुणस्थान में तो सम्यक दर्शन हो चुका था, तो दर्शन प्रतिमा को पंचम गुणस्थान के प्रतिमाओं की कोटि में शेष जो प्रतिमाएं हैं दूसरी प्रतिमा से ग्यारहवीं प्रतिमा तक, ये चारित्र की कोटि में आती हैं। दूसरी से लेकर ग्यारहवीं तक के सभी प्रतिमाओं में सम्यक दर्शन की चर्चा नहीं है, अनुवृतों की चर्चा है, चारित्र गुण की चर्चा है। और दर्शन प्रतिमा में सम्यक दर्शन की चर्चा है, सम्यक्तु की चर्चा है। तो इसको यहाँ क्यों रखा, सभी प्रतिमाओं के आदि में क्यों रखा? चौथे गुणस्थान में तो सम्यक दृष्टि था वो, और फिर दोबारा उसको दर्शन प्रतिमा कहकर बाद में व्रत प्रतिमा आदि लेना चाहिए। दर्शन प्रतिमा के बिना शेष प्रतिमाओं को नहीं लेना चाहिए, ऐसा क्यों कहा? तो इसमें कई कारण हैं। एक कारण ये भी है कि जो चौथे गुणस्थान में नहीं है और पहले गुणस्थान में है, और जिसको चौथे गुणस्थान में जाना ही नहीं है वो सीधा कहाँ जाना चाहेगा? मिथ्यात्व गुण स्थान से पंचम गुण स्थान में जाना चाहेगा तो प्रतिमा की तैयारी करनी पड़ेगी। कितनी भी प्रतिमा ले रहा हो, पहली प्रतिमा अगर ले रहा है तो चौथा गुण स्थान होगा। केवल पहली प्रतिमा को ही धारण कर रहा हो तो उसका गुणस्थान चौथा गुणस्थान ही होगा, और पहली प्रतिमा के साथ दूसरी प्रतिमा भी ग्रहण कर रहा हो तो सीधा वह पहले गुणस्थान से पांचवें गुणस्थान में जाएगा। देखो कैसा है, कारण बता रहे हैं कि दर्शन प्रतिमा पूर्वक ही व्रत प्रतिमा भाव प्रतिमा की कोटि में आ सकती है। दर्शन प्रतिमा पूर्वक ही व्रत प्रतिमा भाव प्रतिमा के कोटि में आती है, अन्यथा दर्शन प्रतिमा को माइनस करो और व्रत प्रतिमा को डायरेक्ट ले लो सम्यक दर्शन के बिना, तो द्रव्य अनुवृत्त प्रकट होंगे कि भाव अनुवृत्त, ये सोचो। द्रव्य अनुवृत्त प्रकट होंगे क्योंकि मिथ्यात्व का उपशमन नहीं हुआ, डायरेक्ट हमने बाह्य अनुवृत्तों का, पंच अनुवृत्तों का ग्रहण कर लिया, 12 अनुवृत्तों का ग्रहण कर लिया, तो चारित्र संबंधी आचार विचार अपने जीवन में आ तो गए लेकिन दर्शन मोहिनी का उपशमन नहीं हुआ दर्शन प्रतिमा न लेने से। और मिथ्यात्व का उपशमन नहीं हुआ तो फिर अनंतानुबंधी का भी उपशमन नहीं हुआ, फिर गुणस्थान कौन सा रहेगा? पहला गुणस्थान रहेगा। तो प्रतिमा धारण करने का मतलब ये है कि आप दूसरी प्रतिमा अगर धारण कर रहे हैं तो पंचम गुणस्थान में जाना चाह रहे हैं, तो पंचम गुणस्थान में ही यदि जाना चाह रहे हैं तो फिर दर्शन प्रतिमा लिए बिना जा नहीं सकते, इसलिए दर्शन प्रतिमा पूर्वक ही व्रत प्रतिमा लेना अनिवार्य माना गया। और दर्शन प्रतिमा पूर्वक यदि व्रत प्रतिमा हम ग्रहण करते हैं तो यह भी जरूरी नहीं कि भाव अनुवृत्त भी प्रकट हो साथ में, यह भी जरूरी नहीं कि भाव व्रत प्रकट हो ही। कोई जीव ऐसा होता है मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का उपशमन करके या क्षोभशम करके व्रत प्रतिमा को भी ले करके पंचम गुणस्थान में जाने की ओर प्रयास करता है लेकिन नहीं जा पाता। क्यों नहीं जा पाता? इन अनुवृत्तों को लेते समय अनुवृत्त जितने परिग्रह का हम त्याग कर रहे हैं उन परिग्रहों के प्रति मूर्छा भाव यदि नहीं हटा, और बहिरंग में एक देश परिग्रह हमने त्याग दिया, 10 परिग्रह में से एक देश त्याग कर दिया, तो वहाँ पर चौथा गुणस्थान ही होगा। अनुवृत्त पालन करते हुए भी चौथा गुणस्थान होगा, भाव अनुवृत्त प्रकट नहीं होंगे, द्रव्य अनुवृत्त प्रकट होंगे। अप्रत्याख्यानावरणी कषाय का उदय होने से वस्तु को त्यागा लेकिन वस्तु के प्रति जो मूर्छा भाव है उसका अभाव नहीं हो पाया, तो चौथा गुणस्थान होगा। ऐसा महावृति का भी हो सकता है, मुनि बन गए और चौथे गुणस्थान में अटक गए, ये क्या नहीं हो सकता? हो सकता है। सम्यक दर्शन धारण कर लिया, सम्यक ज्ञान भी आ गया और द्रव्य संयम भी आ गया, भाव संयम नहीं आया, ऐसा हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है पंचम गुणस्थान में जाके अटक गए। प्रत्याख्यान का उदय होने से सब कुछ छोड़ने के भाव तो हो गए लेकिन थोड़ा सा किसी वस्तु में एक देश परिग्रह की इच्छा रह गई तो प्रत्याख्यान का उदय हो जाएगा और पंचम गुणस्थान में अटक जाएगा। यदि बाह्य पुद्गल वस्तुओं के प्रति, विषयों के प्रति, परिग्रह के प्रति पूर्णतः मूर्छा भाव का अभाव हो जाए तो सीधा पहले गुणस्थान से वह सातवें गुणस्थान को प्राप्त कर सकता है और सातवें से फिर छठे में आएगा, छठा गुणस्थान गिरते समय होता है।
समय हो गया मेरे
हो गए
जिन्होंने बोले
चौथे गुण स्थान के एक मिनट चौथे गुण स्थान के सम्यक्तों में और पंचम गुण स्थान के दर्शन प्रतिमा में क्या अंतर है?
इधर दृष्टि की निर्मलता है,
विशेष रूप से कुछ भी अंतर नहीं है।
इधर दृष्टि की निर्मलता है ना थोड़ी?
नहीं, देखो वो दर्शन पहली प्रतिमा को दर्शन प्रतिमा यह नामकरण इसलिए आया कि वह पंचम गुण स्थान की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहा है, इसलिए दर्शन प्रतिमा पूर्वक व्रत आदि प्रतिमा को ले लो। ये होने से जो व्रत प्रतिमा आदि की इच्छा से पंचम गुण स्थान के अपेक्षा से ऊपर चढ़ने का भाव रखता है, उनका सम्यक दर्शन अनुव्रत के पालन के साथ ही होता है। और चौथे गुण स्थान में आने वाला जीव अनुव्रत के पालन के साथ आता, इस भाव की कोई आवश्यकता नहीं रहती। व्रत प्रतिमा ग्रहण करने के परिणामों से रहित भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, और प्रतिमा लेने के भावों की अपेक्षा से भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, ऐसा जो जीव रहता है उसको दर्शन प्रतिमा होती है। पंचम गुणस्थान की अपेक्षा से जो चढ़ रहा है उसके पास ही दर्शन प्रतिमा होती है। बारह कैसे?
ग्यारह की जगह बारह कहे।
हाँ हाँ, वो सरलता की अपेक्षा से सीढ़ी और एक आध सरल बन जाए इस अपेक्षा से कर दिया। टाइम हो
गया।
प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निश्रित जो शीतल वाणी जग जन मन के मल को धोती अतः कहाती जिन वाणी जयवंतो माँ जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे शीश नवाते कर्म हरो माँ अब तक हम विषयांध रहे अपना हम विषयांध रहे।